श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। करते हैं शब्द बता रहे हैं श्री गणेश करना अर्थात शुभ आरंभ करना। कोई भी नई चीज आरंभ करते हैं तो पहले परमात्मा गणपति का नाम लेते हैं, यह मान्यता है। अगर गणेश की स्तुति की जाए, गणेश का स्तोत्र पढ़ा जाए, गणेश की आराधना की जाए, गणेश के नाम से कुछ शुभ आरंभ किया जाए, उस कार्य में विघ्न नहीं पड़ते। ये महाकाय गणेश हमें क्या संदेश देते हैं आप जानेंगे इस भजन के बाद।
Gajavagana
गणेश लंबोदर गजानन ना जाने कितने नाम दिए हैं भगवान गणेश को। गणपति गणपति गा का अर्थ है बुद्धि, रा का अर्थ है विवेक, पति का अर्थ है स्वामी। जो बुद्धि और विवेक के स्वामी हो, बुद्धि का अर्थ है इंटेलेक्ट, विवेक का अर्थ है विजडम और स्वामी का अर्थ है या पति का अर्थ है लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम। कोई भी नया काम आरंभ करते हैं सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है। जैसा कहा गया कि मान्यता है कि गणेश के नाम से कोई भी काम शुभ आरंभ होता है। गणपति के स्वरूप पे जरा ध्यान दीजिएगा, भारी भरकम शरीर, बहुत बड़ा सर, हाथी का सर, छोटी छोटी मीची हुई सी आंखें, बड़े बड़े कान, हाथी के कान है भाई, सूंड टेढ़ी मेढ़ी, मोटा सा बड़ा सा पेट, चार हाथ दिखाए जाते हैं, एक हाथ में फंदा, एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ अभय मुद्रा में और दूसरा हाथ कई बार दिखाते हैं मोदक मिठाई हाथ में, कई बार दिखाते हैं लड्डू हाथ में, कभी दिखाते हैं कमल का फूल हाथ में। एक पांव जमीन पर, एक पांव मोड़ के ऊपर रखा हुआ है और साथ में चूहा है भाई, मूषक की सवारी करते हैं कहा जाता है। और दो हाथी के दांत, कई बार एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। सबसे पहले हम जरा उनके सर की ओर ध्यान देते हैं। बहुत बड़ा सा सर है, बिग हेड लॉर्ड गणेश। ज्ञान के प्रतीक हैं, विवेक के प्रतीक हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं। कहते हैं आपको अगर जीवन में कुछ भी आरंभ करना हो, सबसे पहले गणपति का नाम लो, अर्थात गणपति का नाम लो, अर्थात बुद्धि विवेक का नाम लो। कहने का तात्पर्य है जो भी आप काम शुरू करते हैं बुद्धि और विवेक से करें। अगर बुद्धि और विवेक से कोई कार्य आरंभ होगा तो उसमें विघ्न नहीं आने चाहिए। गणपति नाम की बात नहीं है, ये आपकी बुद्धि और आपकी विवेक शक्ति की बात हो रही है। बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पावर। बुद्धि क्या करती है? आपको बतलाती है ये सही है ये गलत है। जैसे कि हमारा मन संसार में बहुत चीजें चाहता है, क्षण भर में चंद्रमा पे पहुंच जाता है, मन हमारा सूर्य पे पहुंच जाता है। मन की गति अति तेज है, अति तीव्र है। मन क्या है? बंडल ऑफ डिजायर। मन क्या है? वासनाएं। मन क्या है? इच्छाएं। मन अपने आप को बुनता रहता है। अगर हम मन की बात मानेंगे तो हमारे मन की इच्छाएं से कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आप भी जानते हैं बात को। तो बचपन से लेके आज तक क्या आपकी इच्छाएं समाप्त हुई हैं? बदल गई होंगी, बढ़ गई होंगी। बचपन में आप चाहते थे खिलौना खरीदें, आज चाहते होंगे गाड़ी खरीदें, आज चाहेंगे प्लेन खरीदें, एयरप्लेन खरीदें, हवाई जहाज खरीदें। मन यहां से वहां भागता जाता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड। ये मन की प्रवृत्ति है। लेकिन मन के पीछे जो बुद्धि बैठी हुई है उसको पता होता है क्या ठीक है क्या गलत है। अगर जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं मन के बजाय अगर हम बुद्धि से संपर्क करें, उच्च विचार विमर्श करें, उससे पूछें, आज्ञा लें, क्या मुझे ये करना चाहिए, हाँ या ना, सबसे पहले आपके अंतर से आवाज आएगी। बुद्धि की आवाज आत्मा की आवाज मानी जाती है कि बुद्धि आत्मा के काफी करीब होती है। नहीं फर्क पड़ता आप कौन से धर्म से आते हैं, नहीं फर्क पड़ता आप कौन से देश से आते हैं, नहीं फर्क पड़ता कौन से कल्चर में, किस संस्कृति में आपका जन्म हुआ, कहां आप बड़े हुए, किन हालात में आप बड़े हुए। लेकिन अगर आपने इतना ही सीख लिया कि अपने भीतर जाके अपनी ही बुद्धि से बात करने शुरू कर दी, अध्यात्मिकता की उच्च कोटि की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे आप, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। विवेक, समझदारी, विजडम, हाथी को क्या बोलते हैं? एज वाइज एज एलिफेंट। हाथी को नहीं, गणपति को क्या बोलते हैं? एज वाइज एज एलिफेंट। क्यों? क्योंकि हाथी बड़ा समझदार होता है। इसी प्रकार से गणपति का जो सर है हमारे को संकेत कर रहा है जीवन में कुछ भी आरंभ करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक शक्ति से संपर्क करें, वार्तालाप करें, डिस्कस करें, कंसल्ट करें, उसके बाद अगला कदम उठाएं। दूसरी बात, सर में क्या है? मस्तक। मस्तक तो सर है, माथा। उसमें क्या है? मेमोरी पावर, मन, बुद्धि, चित, अहंकार। एक चीज और बताई जाती है कि अपने मस्तक के अंदर, अपने बुद्धि के भीतर, अपने आत्मा के साथ साथ अपने मन के भीतर अच्छाइयां लेकर आए। आत्मा की प्रवृत्ति है अच्छाई, गुडनेस। थिंक बिग, थिंक गुड, थिंक वाइज। भगवान बाबा ने सरल शब्दों में कह दिया, कीप गुड थॉट्स, अच्छे विचारों को रखें, अच्छे विचारों को पनपने दें, बस। अब जाके देखिए, छोटी सी, लेकिन छोटी आंखें होने के बावजूद भी वह छोटी सी छोटी वस्तु को देख लेते हैं। कभी आपने देखा हाथी को, भारी भरकम, छोटा सी आंखें, छोटी आंखें उसकी होती है, लेकिन छोटी आंखों से वो एक पेड़ को देखता है, वहां एक पड़ी सुई को भी देख लेता है। उसकी दृष्टि बड़ी पैनी है। लेकिन यहां बात करना चाहते हैं, कीप योर फोकस। इसका दूसरा तात्पर्य भी है, वो ये कि गिव अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स ऑफ लाइफ। छोटी सी छोटी वस्तु पे ध्यान दें, खासकर जब आप काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता, बड़ी बातें सोचते रहते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है, आपकी विजन जैसी भी हो, आपकी दृष्टि जैसी भी हो, चाहे आप चश्मा लगाते हो, लेकिन यू मस्ट सी बियॉन्ड व्हाट यू सी। डीप कंसंट्रेशन, मनन की शक्ति को बढ़ाना होगा। बड़े बड़े कान है हाथी के भाई, गणपति के बड़े बड़े कान है। कान का मतलब क्या हुआ? बड़े कान का अर्थ है ज्यादा सुनना, ज्यादा सुनना, डिसिप्लिन टू लिस्टन मोर, लिस्टन पेशेंटली, लिस्टन टू न्यू आइडियाज, लिस्टन टू सजेशंस, लेकिन डू नॉट लिस्टन टू गॉसिप, बेकार की बातों को नहीं सुनना। अननेसेसरी बातों को नहीं सुनना, जो बेकार की बातें हमारे मन में जाके वो मन को प्रदूषित करती हैं, पोल्यूट करती हैं। भगवान बाबा ने क्या बोला? हियर गुड, सी गुड। छोटा सा मुंह है गणपति का, स्पीक गुड, अच्छा बोलो। छोटा मुंह है, कान बड़े, ज्यादा सुनो, कम बोलो। जो लोग ज्यादा बात करते हैं ना, उनका आकर्षण की शक्ति खत्म हो जाती है। सत्यम ब्रूहत प्रियम ब्रूहत ना ब्रूहत सत्यम अप्रियम। शास्त्र में कहा गया, सत्य बोलो, मीठा बोलो, लेकिन जो सत्य कड़वा हो वो बात नहीं बोलो। सत्य बोलो, मीठा बोलो, लेकिन जो बात सच्ची है और कड़वी है वो बात नहीं बोलो। और वो बात भी ना बोलो जो असत्य है लेकिन आप मीठा बोल रहे हैं। भगवान बाबा ने सरल शब्दों में कह दिया, स्पीक गुड, अच्छा बोलो। आपके मुख से लोगों की बुराई ना निकले, अच्छाइयां निकले। उनकी सूंड देखी है, लंबी सी, वक्र तुंडम, वक्र कट होता टेढ़ा, तुंडम कट होता है सूंड, सूंड टेढ़ी सी है। उस सूंड से आप क्या करते हैं? नाक है वो गणपति की, आप नाक से क्या करते हैं? नाक से आप सूंघते हैं, नाक से आपको गंध आती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, है तो गंध ही है, तो स्मेल। और एक अंग्रेजी में कहावत है, आई कुड स्मेल दिस, ऐसा होने वाला है, आई कुड स्मेल अर्ली, मतलब क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज अर्ली। साधारण सी बात पर ध्यान दीजिए, किसी घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, आप घर के पास तो जाते हैं, उनके घर के बाहर ही खड़े होते हैं, आपको सुगंध आती है खाने के, लगता है यहाँ का पकवान बन रहे हैं, क्या खाने सुगंध आ रही है, भूख लग जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में अपने जीवन में लर्न द हैबिट ऑफ स्मेलिंग अर्ली रिकॉग्नाइजिंग अर्ली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. जो आपके जीवन में आप जो काम करते हैं जो कारोबार करते हैं व्यापार करते हैं जो आपके लोगों से आपका संपर्क है पहले आप उसको सूंघ लें जान लें क्या होने वाला है क्या इंटेंशन है क्या थॉट्स है क्या प्लानिंग है. ये आपको आपके व्यापार में बिजनेस में हेल्प करेगा सहायता देंगे जी बात है आपको. कभी आपने सोचा गणपति जी उस सून से जहां इतने बड़े वृक्ष को उठाते हैं पेड़ को उठा लेते हैं वहां छोटी सुई को उठा लेते हैं. क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ग्रॉस एंड सटल. सटल करते छोटी सुई बड़ी और छोटी चीजों को. अन्य शब्दों में कहते हैं मेटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अर्थात आप अपने जीवन में छोटे से छोटे से बड़े से बड़े चीज को देख सकते हैं काम कर सकते हैं संभाल सकते हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं. और आपका ध्यान होना भी चाहिए फोकस होना चाहिए. टूटा हुआ दांत दो दांत होते लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं टस्क बोलते हैं एक दंतम. कई मायने हैं इसके. एक तो ये है भाई स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस कहा जाता है. जो व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे उन्होंने कहा मैं बोलूंगा आप महाभारत को लिखते रहना. गणपति जी लिख रहे हैं और व्यास जी बोली जा रहे हैं. अचानक बीच में उनकी कलम टूट गई. उन्होंने फटाफट टाइम खराब ना हो उन्होंने अपने दांत तोड़ के उसको स्याही में डुबो डुबो के लिखने लग गए. सबसे कहा जाता है उनका एक दांत है. इसे कहा गया स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस त्याग की भावना. गणपति जी महाराज जरा विचार कीजिएगा चार हाथ दिखाए जाते हैं उनके एक हाथ में कुल्हाड़ी. अब कुल्हाड़ी क्या करती है भाई उसको बोलते हैं अंकुश. कुल्हाड़ी काटती है. आप अपने जीवन में अननेसेसरी डिजायर्स को बेकार की इच्छाओं को उठ से काटें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं. एक हाथ में पाशा है. पाशा का मतलब होता है फंदा रस्सी नूज. कभी आप देखा होगा लोग कुत्ते को मारने ले जाते हैं क्या कर रहे हैं कुत्ते को बांधा होता है गले में पट्टा होता है कुत्ते को कंट्रोल कर रखा है संभाल रखा है. इसी प्रकार से पाशा का मतलब इस पाशा से इस नूज से इस फंदे से आप अपनी इच्छाओं को जकड़ कर रखें. यू मस्ट सील ऑन योर डिजायर पुट इन सीलिंग ऑन योर डिजायर. एक हाथ अभय मुद्रा में होता है जैसे आपका आशीर्वाद दे रहे हैं. कहने का तात्पर्य वाई फियर व आई एम हियर. जीवन में इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि कोई आपके साथ हो या ना हो परमात्मा आपके साथ सदैव है. एक छोटी सी बात याद आ गई. एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा गया भाई आप तो कहते हो कि दोस्तों की सहायता करनी चाहिए. जब पांडवों को दंड दिया जा रहा था पांडव लोग जब जुए में हार गए तब आप कहां थे. भगवान कृष्ण बोले भाई उस समय मैं बाहर था. उन्हें आपकी हेल्प करने क्यों नहीं आए सहायता करने क्यों नहीं आए. वो बोले मुझे बुलाया नहीं गया. धृतराष्ट्र वहां बैठे हुए थे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे. दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंक रहे थे. वहां कृष्ण बोले अगर उस समय मेरे को बुलाया होता मेरे पे विश्वास किया होता अगर वहां शकुनी पासे फेंक रहे मेरे को रखा जाता पासे फेंकने के लिए तो तुम क्या सोचते कौन जीतता शकुनी या भगवान कृष्ण. जब द्रौपदी को दांव पे लगाया गया तब भी भगवान कृष्ण को याद नहीं किया. जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब भी परमात्मा को याद नहीं किया गया. माता द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से शिकायत करी, भीष्म पितामह से शिकायत करी, अपने पतियों से शिकायत करी। जब अंत में कोई चारा ना रह गया तब बोली माधव शरणम, मैं आपको शरण रक्षा करो। जैसे माधव को बुलाया माधव आ गया। तो उद्धव ने पूछा हाँ इसका मतलब यह हुआ कि जगह अगर हम आपको नहीं बुलाएंगे तो आप सहायता नहीं करोगे हमारी? कहते मैं तो साक्षी भाव हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जगह हूं। उधर बोले भी अगर आप सब जगह हैं, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तब आप नहीं देख रहे, तब आप नहीं बोल सकते कुछ, आदमी को रोक नहीं सकते हो कि गलत काम नहीं करो। मां कृष्ण बोले मैं रोक सकता हूं, लेकिन जरा विचार करो, अगर आप इस बात से कुछ समझते हैं, जानते हैं, इस बात का अनुभव करते हैं कि मैं साक्षी हूं, मैं वहां पर हूं, आई एम ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंस, ओमनी इंपॉर्टेंट, मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञानी हूं, अगर आप ये बात पर ध्यान देते हैं तो आप गलत काम करोगे क्यों? तो अभय मुद्रा का मतलब यही है, वाइफ ये व्हेन आई एम हियर, इस बात पे ध्यान रहे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, इस बात पे दृढ़ विश्वास रहे। और एक हाथ में गणपति के लड्डू होता है, कभी मुद्रा दिखाते हैं, डू नॉट लेट मटीरियल डिजायर डिस्ट्रैक्ट यू, संसार का आकर्षण आपको गलत रास्ते पे ना ले जाए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक पांव जमीन पर होता है, एक पांव ऊपर होता है, यानी कि लिव इन द वर्ल्ड लाइक एनीवन एल्स, जमीन पर रहो, लेकिन अपना ध्यान जो टांग मुड़ाओ कह रहे हैं कि ध्यान परमात्मा लगाए रखो। बहुत बड़ा पेट है, गोल मटोल का क्या मतलब हुआ? वन शुड लर्न टू एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट ऑल दैट हैज टू ऑफर टू यू। आपके जीवन में आपको जो भी मिलता है उसको पचाइए, अर्थात आपके अंदर कोई कड़वाहट डाले, बुराइयां दिखाए, बताए, बोले, सुनना पड़े पड़ जाए आपको, उसको पचा लें, चुप रहें। छोटी टांगे हैं ताकि बैलेंस रहने के, स्टडी प्रोग्रेस के लिए। चूहे की सवारी करते हैं, चूहा कहां जाता है? अंधकार की ओर जाता है। हमारा जीवन वासनाओं की ओर भागता है चूहे की भांति, उस पर कंट्रोल करें, उस पर नियंत्रण रखें। अर्थात कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। देखने में कोई हैंडसम तो नहीं लगते गणपति जी, लेकिन तब भी उनकी दो पत्नियां बताई जाती हैं, दिखाते हैं उनको अकेला हमेशा, कभी उनको अपनी पत्नियों के साथ ही दिखाया जाता है, अकेला दिखाया जाता है, उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, कभी जाता कहा जाता है बुद्धि और सिद्धि। बुद्धि करते विवेक शक्ति इंटेलिजेंस, सिद्धि करते अचीवमेंट रियलाइजेशन। कहने का तात्पर्य है अगर आप हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने बुद्धि से संपर्क करेंगे, आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी, आपको रियलाइजेशन, आपको रिद्धि, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। गणपति की पूजा 10 दिन की जाती है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको शुद्ध करने हेतु। विचार कीजिएगा, गणपति जी का नाम बार बार रटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। उनको समझ के उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना, जीवन को चलाना, उस प्रकार से जीवन जीना, आप संयम गणपति बन जाएंगे। थिंक अबाउट इट, विचार कीजिएगा। और ये गणपति उत्सव आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री साईं राम।